श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग इस्कॉन में हर संध्या भगवद गीता पे चर्चा करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार सुबह श्रीमद् भागवत पर और शाम को भगवत गीता पे चर्चा होती है। भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो कि उपनिषद भी है, श्रुति भी है और स्मृति भी है। श्रुति शास्त्र भी है क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इसको श्रुति श्रवण किया, इसलिए श्रुति शास्त्र है। ये स्मृति शास्त्र भी है क्योंकि जब भगवान कृष्ण नहीं थे तब भी अर्जुन ने इन शास्त्रों का स्मरण किया और फिर इन शास्त्रों से उन्होंने पाया कि भगवान कृष्ण उनके साथ में विराजमान है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गीता है भगवान नहीं है। अगर गीता किसी के घर में है, किसी के हाथ में है, तो समझ लीजिए ठाकुर जी साक्षात उसके हाथ में विराजमान। इसको पुस्तक समझने वाला अपराधी होता है। भगवद गीता पुस्तक नहीं है, भगवद गीता साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, श्रीमद भागवत और भगवद गीता। उपनिषद के रूप में अगर देखें तो ये आदेश देती है कि व्यक्ति को अपना जीवन कैसे चलाना चाहिए, इसलिए इसका एक नाम है गीतो उपनिषद। टोटल उपनिषद देखे जाए तो कई 250-300 उपनिषद हैं, परंतु उनमें से प्रमुख उपनिषद 108 है। उन 108 में से भी मुख्य 12 उपनिषद हैं और उन 12 उपनिषदों का सार है ईशो उपनिषद, कठो उपनिषद, जितने भी कली संडण उपनिषद, जितने उपनिषद हैं उन उपनिषदों का सार है गीतो उपनिषद, भगवद गीता। तो इस भगवद गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ना, सुनना, समझना, अपने जीवन में उतारना, असीम कृपा मिलती है जो व्यक्ति भगवद गीता को कभी जीवन में श्रवण कर लेता है। और वो व्यक्ति बड़ा पापी होता है जो कि ऐसी कथा को सुनने के बाद भी रिजेक्ट कर देता है और उसको गहन नरकों के अंदर ले जाया जाता है, जो गीता की कथा को न सुन करके अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर देता है। तो भगवद गीता का ये मूल ज्ञान श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है। तो आज हम इस श्लोक पर चर्चा करेंगे, 18वें अध्याय का 16वां श्लोक। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशिता माम आत्मा पर देहेशु प्रदीशन्ति अभ्युसुकः। इसका अनुवाद पढ़ेंगे, बोलिए। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो ये बहुत ही मुख्य श्लोक है, हमारे जीवन को पूरा बदल के रख सकता है अगर इस श्लोक को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। इतना सुंदर इसमें वर्णन है, पहला शब्द दिया है अहंकारम। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। पहली चीज क्या है? आसुरी। तो जो व्यक्ति ये बोले गीता वीता कौन पढ़ेगा, टाइम नहीं हमारे पास में, अरे बच्चों को देखें, नौकरी पे जाएं, कि ये गीता बेड लेके बैठ जाए, ये तो बुढ़ों का काम है। तो पहले शब्द में प्रभुपाद ने क्या कहा, वो कौन है? आसुरी, डिमोनिक क्वालिटीज। दूसरा कहा भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। शास्त्रों में वो व्यक्ति विश्वास करना पसंद नहीं करेगा। अब जो राक्षस है, आसुर है, वो कभी शास्त्र में विश्वास करेगा? कभी नहीं करेगा। वो तो ये कहेगा, अरे
ये तो इंसान के लिखे हुए हैं, ये पंडितों ने अपने आप ही बना लिए, लूटने के लिए बना लिए, ऐसे करके बोलते हैं। और वो गीता के प्रवचन में भी कई लोग आते हैं, सुनते हैं तो लोग कमेंट्स करते हैं, अरे तो इंसान का लिखा हुआ है, हम क्या पढ़ेंगे इसको। अहंकारम, अहंकार में जो व्यक्ति होता है ना, प्रभुपाद लिख रहे हैं अहंकार का अनुवाद शब्दार्थ मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। हम सबको ईगो तो होना चाहिए, ट्रू ईगो, कि मैं भगवान का दास हूं, ये ईगो सही है। लेकिन फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार, कि मैं ये शरीर हूं, भगवान का दास नहीं। तो इस फॉल्स ईगो के कारण क्या होता है, वो व्यक्ति फंस जाता है संसार में, फॉल्स ईगो में, मिथ्या अहंकार, और वो क्या करता है, शास्त्रों को रिजेक्ट करता है। मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है, उनसे पूछो, आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स का ज्ञान दिया, दो और दो चार दिखाया, शून्य का ज्ञान दिया, और वो तो इसी कलयुग में आए, और उनके द्वारा दिया गया गणित मैथमेटिक्स हम पढ़ करके क्या कहते हैं, अरे मैथमेटिक्स की नॉलेज, ओहो। अब उस व्यक्ति से पूछो, कोई पीएचडी करके आए, उससे बोलो क्या पढ़ा है तुमने, तुम्हारा ज्ञान तो इंसान के द्वारा लिखा हुआ है, तो उसे कैसा लगेगा, वो मानेंगे। आर्यभट्ट की पढ़ी हुई मैथमेटिक्स से किसी ने पीएचडी कर लिया है, ओहो स्कॉलर है, स्कॉलर है, और किसी ने वेद व्यास के शास्त्र पढ़कर शास्त्र कोर्स कर लिया है, तो वो बेकार है, वो पंडित है, वो बेवकूफ है ना। जबकि वेद व्यास स्वयं भगवान के शक्ति आवश्यकता है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। तो दो चीजों से ईर्ष्या करते हैं राक्षस, एक तो भगवान से और दूसरा भगवान के शास्त्रों से। शास्त्र पढ़ लेंगे तो भगवान पता चल जाएगा, गीता में लिखा है, भगवान कह रहे हैं अहम बीज पदा पिता, मैं ही हूं बीज प्रदान करने वाला पिता। लेकिन ये पढ़ लेंगे तो भगवान से मानना पड़ेगा, लेकिन भगवान को तो मानना नहीं, क्योंकि नियम पालन कौन करे जी, हम तो 10 बजे सो के उठेंगे, ये गीता वीता पढ़ के ना 4-4 बजे उठते हैं, बालों को उड़वा देते हैं, अरे ऐसा पागल नहीं बनना हमको, साफ साफ मना कर देते हैं। इसलिए शास्त्र नहीं मानते, इसी का मतलब वो भगवान को भी नहीं। लेकिन उनसे क्या बोलो, अरे प्रभु मैंने तो अपना काम कर दिया, देखो आई हैव डन माई टारगेट्स, मैंने अपनी कंपनी में सारे टारगेट कर दिए, बाकी भगवान भरोसे है। उसे पूछो कौन से भगवान की बात कर रहे हो, उसे पता ही नहीं होता भगवान कौन है। किसी किसी को पता होता है, सुनी सुनाई बात होती है, तो कहता है हाँ कृष्ण भगवान है। लेकिन भगवान को भगवान मानने का मतलब है भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को भी अपने जीवन में उतारना। सोचो आपके माँ बाप है कि नहीं, आपके माता पिता सबके हैं, आपके माता पिता घर में बुजुर्ग हैं बैठे, और आप उनको रोटी खिला रहे हो, चावल खिला रहे हो, सब्जी खिला रहे हो, तो उनकी सेवा कर रहे हो। लेकिन आप सुबह उठते हो और बोलते हो मैं रामचंद्र जी की बताई सीख पर चलता हूं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नव ही माता, मेरे माता पिता तो भगवान समान है, सुबह पैर छूता हूं। शाम को पिताजी कहते हैं बेटा तू इतना पैसा कमाता है, जरा 5,000 रुपए मुझे दे दे। तो कहते पिताजी आपकी तो रोज रोज डिमांड है, कभी 4,000 दे दो, तो मेरे पास नहीं आपके लिए पैसा। अच्छा बेटा मुझे भूख लगी, मेरे लिए खाना बना दे, अपनी बहू से कह दे, अपनी पत्नी से। पिताजी हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपनी नौकरी करें कि आपके लिए खाना ही बनाते रहे। तो क्या वो अपने पिता माता की सेवा कर रहा है, उनको मान रहा है माँ बाप, उनको तो कृपा करने वाली एक एटीएम मशीन मान रहा है, जाओ पैर छुओ कृपा लो और अपना काम बढ़ाओ आगे। यही हमने भगवान का हाल कर रखा है, मंदिर आते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, कहते कृपा करो, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर हम भगवान के लिए कुछ नहीं करेंगे तो भगवान कहते हैं तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, जब तू मेरा नाम लेता है तो मैं तेरे काम करता हूं। भगवान कहते हैं तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं, तू कर वो जो मैं चाहता हूं, गीता में लिखा है तू कर वो जो मैं चाहता हूं और फिर होगा वो जो तू चाहता है। चाहते हैं कि नहीं आप, तो करना क्या पड़ेगा, लिखा है, लेकिन कोई मानेगा नहीं। जब मानेंगे नहीं, गीता में अगर एक चीज भी मिस हो जाए तो हमको इस वापस संसार में आना पड़ता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र। इस शास्त्र को स्कॉन के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से बड़ी सरलता से दिया जा रहा है। आप देखिए, एक बलि महाराज थे, जानते हैं आप बलि महाराज, बड़े अहंकारी थे। अहंकार शब्द से ही मैं कथा कर रहा हूं, कई कई बार क्या होता है मैं कथा करने बैठता हूं, एक शब्द पे ही 5 घंटे निकल जाते, तो आगे चल ही नहीं पाते। लेकिन क्या कह रहे, भक्तों का ऐसा भाव है, बलि महाराज को बड़ा अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, दुनिया जहान में उन्होंने दान दिया। उन्हीं के नाम से भगवान के पास में पहुंच गए सारे देवता और बोले, बलि महाराज एक यज्ञ करने वाले हैं, अश्वमेघ यज्ञ, 100 अश्वमेघ यज्ञ हो जाएंगे तो वो राजा बन जाएंगे स्वर्ग के। तो इंद्रदेव घबरा गए, बोले अरे अभी ये बलि ने क्या किया है, हमको यहां से निकाल दिया है। आसुरी प्रवृत्ति के सारे राक्षसों ने, बलि महाराज राक्षसों के राजा थे, बोले हमें निकाल दिया हमारे स्वर्ग से, हमारे पास जगह नहीं है, भगवान कुछ करिए। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं अभी कश्यप मुनि और द्युति माता के गर्भ से प्रकट होऊंगा वामन रूप लेके। प्रकट होकर के क्या करूंगा, छल के मैं इससे सब कुछ ले लूंगा। कहा अच्छा भगवान। भगवान ने एक बोने का रूप बनाया, 2.5 फुट के बोने, वामन अवतार, केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे। वामन रूप लेके भगवान चल दिए। यज्ञशाला में पहुंचे, बोलते हैं मुझे आपसे दान चाहिए राजा बलि। कह रहे कितने सुंदर ब्राह्मण हो, तुम्हें देख के तो मन कर रहा है सब कुछ दान कर दूं। भगवान मन में सोचते हैं लेऊंगा तो सब कुछ ही, छोड़ूंगा कुछ नहीं। इसीलिए भगवान गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, हरिष्यामि अहम सर्वम, मैं सब कुछ हर लेता हूं, पर कब, मृत्यु के समय। जीते जी अपने आप दे दो तो कृपा मिलती है, मरने के बाद तो वैसे ले लेता हूं। कुछ लेके गया आज तक कोई अपने साथ, शमशान घाट में कोई गाड़ी बंगला जा रहा हो साथ में, कुछ नहीं जाता। लेकिन फिर भी जब तक जीता है आदमी, बोले मंदिर बन रहा है थोड़ा मंदिर के लिए दान दीजिए ना। बोले नहीं प्रभु अभी तो थोड़ा मुश्किल चल रहा है, टाइम अभी दे नहीं पाएंगे, है ना। जब तक हम ये सोचते रहेंगे, भगवान इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, किसी ना किसी तरह प्रकृति के अंदर वो हमारा जो उनके द्वारा दिया गया है वो ले लेते हैं, या तो हॉस्पिटल में, बीमारी में, चोरी में, फ्रॉड में, या गिर जाएगा पॉकेट मनी, लॉस्ट हो जाएगा पॉकेट से, या फिर दान के रूप में। तो कौन सा बेहतर तरीका है, दान कर देना। तो बलि महाराज ये जानते थे, इसलिए वो सब कुछ देने को तैयार थे। उनके गुरु शुक्राचार्य आ गए, बोले क्या कर रहे हो आप, दान मत दो, ये विष्णु है, सब कुछ छीन लेगा तुम्हें तुम्हारा। तो कहते छीनने तो कोई बात नहीं, इतना सुंदर ब्राह्मण है, आज इसको देने का मेरा मन है। तो उन्होंने जल पात्र उठाया, उसमें ऐसे सुराही जैसी मुंह निकला हुआ था, उस जल लेकर 3 बूंद डाल के ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः अर्पित करने ही वाले थे उनकी इच्छा अनुसार, लेकिन बीच में कौन आकर बैठ गए, शुक्राचार्य उस नाली के अंदर आके बैठ गए, उनके गुरु राक्षसों के। बोले अगर तुमने इनको दे दिया तो ये सब कुछ ले लेंगे। इन्होंने क्या मांगा है, उस छोटे से ब्राह्मण बालक वामन ने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी, 3 पैर भूमि दे दो। तो राजा हंसने लगा, बोला 3 पैर छोटे छोटे, 2.5 फुट के हो तो 3 पैर में तुम्हारी लिए तो खड़े होने की जगह भी नहीं बनेगी, कुछ और मांगो, 100-200 मीटर मांग लो, 100-200 गज मांग लो, लेकिन ये 3 पग भूमि क्या करोगे तुम। तो भगवान ने कहा मुझे देखो, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा अहंकारम बलम बलशाली है, अहंकार है, उसी पे ये श्लोक है, दर्प घमंड से भरा हुआ है कि मेरे पास जो कुछ है किसी के पास नहीं, शक्तिशाली हूं, बोल क्या चाहिए। ठीक है 3 पग भूमि दे दो। तो देने लगे तो बैठ गए आकर उनके गुरु, उन्होंने गुरु को ही छोड़ दिया, बोले जो गुरु कृष्ण की सेवा ना करने दे, वो गुरु को ही रिजेक्ट कर दिया। एक डंडी उठाई लकड़ी की और उस सुराई के अंदर डाली, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, खून निकलने लगा, शुक्राचार्य भाग गए, बोले ये अब सुनने वाला नहीं है। उन्होंने जल पात्र में से जल लिया, हाथ में आचमन किया और कहा मैंने आपको ये समर्पित कर दिया। 3 पग भूमि लेते ही भगवान ने कहा वाह बलि क्या काम किया तुमने, 1 पग में नीचे के 7 लोक सूतल तलातल वितल रसातल पाताल सब नाप लिया, और ऊपर के जो लोग थे ना वो भी नाप लिए। दूसरे पैर में जैसे ही दूसरा पैर उठाया तो ऊपर की ओर जा रहा है दूसरा पैर। अब पूछते हैं 3 पग में 2 ही पैर में मैंने पूरा 14 भुवन नाप लिए, स्वर्ग लोक तप लोक जन लोक महालोक ब्रह्म लोक तक नाप लिया, नीचे के तलातल रसातल तक नाप लिया, तीसरा पैर कहां रखूं। बलि तुम झूठे पड़ गए, तुम झूठे पड़ गए, तुमने तीसरा पैर रखने के लिए जगह कहां है। बलि घबरा गया, बलि का अपने पूर्व जन्म का किया गया कुछ पुण्य अर्जित हुआ, सुकृति आई, बुद्धि आई, उन्होंने कहा प्रभु एक बात बताइए, पैसा बड़ा होता है या पैसे वाला। तो उन्होंने कहा कि पैसे वाला। बोले क्यों। बोले क्योंकि पैसा तो समाप्त हो सकता है लेकिन पैसे वाला अगर जीवित है तो नया पैसा प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए पैसे वाला। तो धन से धनी बड़ा है, मैं धनवान हूं, मैं धनी हूं, मेरा धन चला गया है लेकिन मैं तो हूं, आप क्या करिए अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तब बलवान बलि से बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह तूने खुद को ही समर्पित कर दिया, तभी से नाम पड़ गया बलिदान। होता है ना, वो लोग बोलते हैं उन्होंने अपने बेटे का बलिदान कर दिया, सैक्रिफाइस को हिंदी में बोलते हैं बलिदान। ये बलि ने जब अपने शरीर का दान किया तभी से शब्द आया बलिदान। तो हमको मंदिर आदि की सेवा में क्या कर देना चाहिए, खाली दान नहीं करना चाहिए, बलिदान, जैसे बलि महाराज ने किया, अपने पूर्ण रूप से शरीर को दान कर दिया। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा अब तुम्हें क्या चाहिए, कहा देखो अभी तो तुम्हें स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा, अभी तो इंद्र रहेगा, तुम चले जाओ नीचे सूतल लोक में, और सूतल लोक में जाकर तुम विराजमान रहो, वहां तुम्हें वैसा ही सुख मिलेगा जैसा स्वर्ग में मिलता है, और जब अगला मनवंतर आएगा स्वरचिष्ट मनवंतर, तब तुम क्या बन जाओगे, स्वर्ग के राजा भी बन जाओगे, ब्लेसिंग भी दे दिया। तो बलि बड़े चालू थे, भक्त होता है ना, कृष्ण भक्त अति चतुर, बहुत चतुर होता है। उसने कहा प्रभु खाली सूतल लोक मिला तो क्या मिला, जहां आप नहीं वहां आपका भक्त नहीं, आप साथ चलिए। बोले क्या चाहते हो, बोले मेरे द्वारपाल बन जाओ। भगवान ने बोला कौन से गेट का, बोले ये तो अब आपको देखना है, आप तो विस्तार कर लेते हो अपना 16108 रूपों में, हर गेट पे आपको रहना है। तो चार गेट थे, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार, पूर्व द्वार। अब बलि महाराज जिस गेट से निकलते थे भगवान को दौड़ करके उस गेट पे आना पड़ता था, लतपत पसीने से हो जाते थे, बोले अरे आज कहां से निकलेंगे राजा बलि, बोले आज उत्तर द्वार से। तो भगवान अगर पश्चिम में खड़े दौड़कर आते थे उत्तर द्वार में, बोले राजा को दिखना चाहिए कि मैं द्वारपाल बन के खड़ा हूं। भगवान को भक्त ने बांधकर चौकीदार बना लिया, सोचो आप, इतनी शक्ति है भक्ति के अंदर, इतनी शक्ति है जप करने में, लोग भगवान से मांगते हैं, यहां भगवान भक्त से मांग रहा है, सोचिए आप, इतना ना योगी के पास शक्ति है, ना ही किसी सनातन धर्म के अंदर कोई देवी देवता इतनी शक्ति प्रदान नहीं कर सकता जितना कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकती है। कृष्ण कहते हैं अहम भक्ता पर अधीन हूं, मैं भक्त के पर अधीन हो जाता हूं। यशोदा मैया कहती है बांध दूंगी तो बांध दे, बंध जाता हूं। नंद बाबा कहते हैं मेरे जूते उठाओ तो मैं जूते उठाने के लिए भागता हूं। अर्जुन कहता है मेरा रथ चलाओ तो मैं नौकर बन जाता हूं, ड्राइवर बन जाता हूं। बलि कहता है मेरा चौकीदार बन जाओ तो चौकीदार बन जाता हूं। इतनी शक्ति है भक्ति में, एक बार समर्पित करके तो देखो अपना जीवन, बलिदान कृष्ण के लिए, तन मन और धन मत मांगो प्रभु जी, बड़ी मेहनत से कमाया है, तन मन धन सब भगवान की सेवा में जो लगाता है वो अहंकार बल दर्प से मुक्त हो जाता है। विनम्रता तभी आती है जब मेरे संसार का अर्जित मेहनत से जो मैंने कमाया है वो जब मैं भगवान की सेवा में लगाता हूं ना, तब ये चीजें निकलती हैं, वरना तब तक ये मृत्यु के पर्यंत, मृत्यु के बाद भी मन बुद्धि अहंकार ये साथ में अगले शरीर में जाता है। कई जन्म बीत गए लेकिन मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा अहंकार समाप्त नहीं हुआ, ये चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जितने जितने जन्म लेता रहूंगा उन उन जन्मों के अहंकार अर्जित करके एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा अहंकारों का, मुक्त नहीं होगा। तभी होगा जब मैं भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा। तो बलि महाराज जब इस प्रकार से थे, लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा, लक्ष्मी जी बोली ये क्या हुआ, मेरे विष्णु जो है मेरे पति नारायण वो क्या कर रहे हैं, चौकीदार बन के बैठे और ऊपर वैकुंठ खाली पड़ा। लक्ष्मी जी आई बलि से, कहती हैं बलि जी रूप बदल के आए, बोले मैं आपकी बहन। तो बोले मेरी बहन, बोलिए बहन क्या चाहिए, कहा देखो अब आपने अपने मुंह से बहन कह ही दिया है, और बहन को क्या चाहिए, राखी बांधने आई हूं। तो पहली बार राखी का जो ये जो कल्चर शुरू हुआ, ये पहली बार बलि महाराज को लक्ष्मी जी, रमा माता ने, जो लक्ष्मी रमा नाम से जानी जाती है, रमा ने पहली बार बलि महाराज को राखी बांधी। बोले बोलो बहन आप राखी बांधी है तो कुछ तो दूंगा, कुछ तो गिफ्ट बनता है आपका, 101 का शगन है ना। तो उन्होंने कहा कि बोलो क्या चाहिए, बोले बस मेरी एक ही इच्छा है, मेरे पतिदेव को रिहा कर दो यहां से। कह रहे तुम्हारे पतिदेव कौन, बोले ये जो आपके द्वारपाल है। कह रहे आप कौन है, तब रूप लिखा, चतुर्भुजधारी भगवान के सामने प्रकट हुई लक्ष्मी मैया, कहती है मैं हूं सामने रमा माता, प्रकट हो गई। रमा माता ने उनको बताया कि मैं जो हूं पत्नी हूं नारायण की। कहा अच्छा माई आप ले जाना चाहती हैं तो ले जाइए, लेकिन ये तो वादा करके आए थे कि मेरे साथ में ही विराजमान रहेंगे। तो इस तरह से आप देखिए भगवान ने रमा नाम का वैकुंठ बनाया बलि महाराज के लिए, रमा वैकुंठ, और वहां पर लक्ष्मी जी को विराजमान किया, विष्णु को भी विराजमान किया। तो भगवान इतना कुछ कर सकते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति से संग्रह से उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति के पास धन होगा, जिस व्यक्ति के पास में शक्ति होगी, संग्रह करेगा, प्रतिष्ठा आएगी, वो व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या भी आती है। अपने धन के कभी कभी घमंड आ जाता है व्यक्ति को, मेरे पास बहुत धन है दिखा दूंगा। लोग बोलते मेरे पास बहुत धन है बताओ करना क्या है। इस तरह से लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं, और उसी ईर्ष्या के कारण प्रभुपाद जी कह रहे हैं ईर्ष्या द्वेष समुत्थेना, हमारी इच्छा थी और भगवान से हमने द्वेष किया, इसी के कारण हम इस संसार में आए हैं, और कई जन्मों तक हम इसी संसार में रहने वाले हैं जब तक हमारी इच्छा समाप्त नहीं होगी और भगवान के प्रति हमारा द्वेष समाप्त नहीं होगा। तो भगवान से और भगवान के शास्त्रों से द्वेष करना ये नाम अपराध भी होता है, हमें द्वेष नहीं करना है। इसे न जानते हुए वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है और दूसरों के प्रति भी द्वेष करता है। अपनी शक्ति का बड़ा घमंड होता है आदमी को, अपनी शक्ति के घमंड में व्यक्ति, रावण ने क्या किया, जानता था भगवान राम आए हैं मुझे मारने के लिए, लेकिन भगवान राम के शरणागत नहीं हुआ, शिव जी को जाके कहता है हे भोलेनाथ, ये दशानन जानता है कि जो आए हैं ना ये श्री राम साक्षात नारायण उतर आए मेरे मारने के लिए, लेकिन देखिए भोलेनाथ आपका भक्त कितना उत्तम है, मुझे मारने के लिए भी भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा। ये अहंकार मर रहा है, लेकिन मर भी अहंकार से रहा है, कह रहा है दशानन शीश कटा सकता है लेकिन शीश झुका नहीं सकता। अरे वाह क्या दशानन है, ये अहंकार बोलता है व्यक्ति का। जब रावण मारा गया तो रावण से जब मर रहा था पूछा तुमको किसने मारा, रावण कहता है मुझको मैंने मारा। आदमी सब चकित हो गए, बोले तुम खुद को कैसे मार सकते हो, सुसाइड किया क्या, बोले नहीं मुझको मैंने मारा, मैं मतलब मिथ्या अहंकार, मेरे अहंकार दर्प घमंड ने मुझे मारा। एक बार एक कौवा था, पुराणों की कथा आती है, उस कौवे ने कहा कि अपने कौवे की बिरादरी में बड़ा घमंडी था, बोला मुझे है ना 100 प्रकार की गति से उड़ना आता है। कहा अच्छा 100 प्रकार की गति से कैसे उड़ सकते हो, कहता उडीन अवडीन प्रडीन नवडीन, ऐसे उसने 100 प्रकार की गतियों का वर्णन किया। कई सारे हंस थे जो कि समुद्री तट पर होता है ना, साइबेरियन बर्ड्स आती हैं, वो साइबेरिया से उड़ के रशिया से आई थी कुछ बर्ड्स, कुछ चिड़िया हंस, उनके बीच में अपना वो दिखा रहा था, मैं ही हूं कौओं का राजा, इन कौओं में आई एम द बेस्ट, है काला कौए जैसा, खाता है विष्ठा, लेकिन नाम क्या कह रहा है, मैं एक्सपर्ट हूं उड़ने में, 100 प्रकार की गति है। तो एक हंस ने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया, अच्छा भाई समुद्र पर उड़ सकते हो, बोला जी समुद्र कई समुद्र नाप दिए हमने, अटलांटा से लेकर आर्टिक तक सारा हमने नाप आया। तो जब इस तरह बोला तो हंस को लगा कि अच्छा, तो बोला हंस ने कहा कि फिर हो जाए भैया एक बार, बोला देखो मेरे से हो नहीं, तुम कर नहीं पाओगे, मैं 100 प्रकार की गति जानता हूं, तुम कितनी जानते हो। अब ये हंस बेचारा शरीफ था, ये बोला मैं 100 प्रकार की तो नहीं जानता, मैं 1 प्रकार की जानता हूं कि पंखों को ऐसे ऐसे करो और दिशा में उड़ने लग जाओ। कहा चलो फिर हो जाए। तो इसने सोचा था मैं अपना थोड़ा सा नाटक दिखाऊंगा तो लोग ताली बजाएंगे, हंस को बेइज्जती लगेगी, खत्म हो जाएगी, और उड़ना शुरू किया दोनों ने और समुद्र के बीच की ओर जाने लगे। इसने नीचे ऊपर कभी ऐसे, और फ्लाइंग होती है ना ऐसे, अपना एरोप्लेन दिखाते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त में ऐसे ऐसे, और कर करके दिखाया सारा इसने। जब ये कर रहा था तो हंस सोच रहा अजीब बढ़िया बहुत समझदार है, बड़े एक्सपर्ट है, मैं तो साधारण सा हूं, उड़ता जा रहा है उड़ता। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पसीना बहने लगा, ऐसे करे पानी पी ले चुपके से गुड़, फिर ऊपर जाए फिर नीचे गुड़ पानी मिले। हंस को लगा कि इसकी गति कुछ गिर रही है, ये मर जाएगा। तो उन्हें पूछा भाई आप बार बार पानी क्यों पी रहे हो, तो अब देखा इसने कौए तो बहुत दूर रह गए, तो बोला तुम अकेले में हो, तुमसे बताऊं अब मुझसे और उड़ा नहीं जाएगा। अब हालत खराब है, बोले बस अब मरने की स्थिति आ गई है, बचा लो मुझे। तो उसने कहा कि ठीक है आप जो है यहां रहते हैं, आपने मेरे साथ स्पर्धा किया। तो उसने उठाया पंजे से और अपनी पीठ पे रख लिया हंस ने, और उड़ता हुआ लाया उतार दिया। तो लोगों ने पूछा क्या हो गया, कौए बोले हंस बोला जीत गए थे लेकिन एन समय पर इनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण से मैंने इनकी मदद की, इनको ला दिया, उसने उनको बचाया। तो भक्त को हंस जैसा होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति के अवगुणों को देखकर भी उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और किसी व्यक्ति में अगर घमंड है तो एक ना एक दिन उस व्यक्ति का घमंड टूटता है। रावण का टूट गया तो किसका नहीं, किसका बचेगा। तो इसीलिए कभी भी किसी को, कई लोगों को ज्ञान का ही घमंड हो जाता है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, ज्ञान का घमंड हो जाता है। भगवान ऐसा तोड़ते ना, ऐसा तोड़ते हैं, किसी लायक नहीं छोड़ते हैं, बहुत तोड़ते हैं भगवान। ये अनुभव से सीख सकते हैं आप। आप कहेंगे गीता तो हमारे घर में भी है, हम आपका प्रवचन क्यों सुने। व्यक्ति को भक्त का प्रवचन इसलिए सुनना चाहिए कि हर भक्त का अलग अनुभव होता है अपने जीवन में, और जब वो प्रवचन करता है तो अपने अनुभवों को व्यक्त करता है। श्लोक तो वही है, अनुभव व्यक्त करता है। और जब हम दूसरे के अनुभवों को लेते हैं, इसी को कहते हैं साधु संघ। अनुभव लेने से हम अनुभवशील बनते हैं, फिर जब परिस्थिति आती है तब उन अनुभवों को रियलाइजेशन में कन्वर्ट करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसलिए अनुभव लेने हैं हमको। आगे वर्णन करते हैं, प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। जो अहंकारी होता है वो अपने को शक्तिमान, अहंकार विमूढ़ आत्मा क्या मानता है, सिद्धो अहम बलवान सुखी, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं, स्वतंत्र मानता है। वो ये नहीं जानता मैं भगवान पे निर्भर हूं, उसको हमेशा यही लगता है मैं कौन हूं, इंडिपेंडेंट हूं। और हम तो अपने बच्चों को बढ़ाते भी हैं, बेटा इंडिपेंडेंट बनो, देखो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जिसके पास जाओ एक ही बात बोलता है, जी बच्चों को एक बार अपने पैरों पे खड़ा कर दें उसके बाद हम फ्री हैं, इंडिपेंडेंट। लेकिन क्या बोलते हैं आप लोग, इंडिपेंडेंट बनना सही है या गलत है? बच्चा जानता है कह रहा गलत है, क्योंकि वो मां बाप पे डिपेंडेंट है। लेकिन मां बाप गलत है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गए। एक पतंग है जो कि धागे से जुड़ी है, जब उसे खींचते हैं तो कहां जाती है, ऊपर के नीचे, ऊपर। और जब वो कट जाती है धागे से तो ऊपर जाती है नीचे, तो जब इंडिपेंडेंट होती है तो नीचे जाती है, जब डिपेंडेंट होती है तो ऊपर जाती है। इसलिए सिंपल सी फिलॉसफी है भगवत गीता की, अपने को भगवान पे डिपेंडेंट बना दो। इंडिपेंडेंट नेचर जो है ना, हमें बचपन से हमारे शिक्षा संस्थानों ने, स्कूल्स कॉलेजेस ऑफिसेस, हमें सिखाया गया है बी इंडिपेंडेंट, बी क्रिएटिव, बी दिस बी दैट। वो सिंपल सा है, बी सिंपल, हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग। आजकल लोग कैसे हैं, हाँ जी, हाई लिविंग एंड चीप थिंकिंग, है ना, थिंकिंग इज वेरी चीप। पहले लोग बोलते थे पहले जमाने के कि इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, दोबारा कमाई जा सकती है, अगर जायदाद चली गई तो दोबारा कमा लेंगे। इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, अगर स्वास्थ्य चला गया तो एवरीथिंग इज गॉन। लेकिन अभी कैसे लोग हैं कि हेल्थ जो है वो वेल्थ के कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं, 12-12 घंटे की जॉब, उसके बाद में वो आजकल आता है डीमैट अकाउंट, सब खोल कर बैठ जाते हैं शेयर बाजार, है ना, शेयर करते रहते हैं आज का ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कमाते हैं, सोचते हैं इसको मैं कमा करके इतना अमाउंट इकट्ठा कर दूंगा 10 सालों में कि अगले 10 साल फिर मैं फ्रीडम से रहूंगा। लेकिन पता ही नहीं चलता, वो जब 10 साल समाप्त होने वाले हो तो ऐसा झटका लगता है। कई मिलते हैं मुझको, बोलते प्रभु जी हमने खूब बड़ी हमारी ग्रोथ चल रही थी, 8 साल कमाया, 9वें साल में हमारे को 15 लाख का घाटा हो गया, है ना। देखिए भगवान ने आपके लिए सब कुछ निर्धारित किया है, जो आपका है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपका नहीं है उसे आप कभी कमा नहीं सकते। अहंकार में लगता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, मन में ये चलता है करने वाला मैं हूं, आई एम द डूअर। जब ये डूअरशिप एटीट्यूड रहता है, सरेंडर नहीं आता है, तब तक जीवन की स्थिति डगमग 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 है। डूअरशिप छोड़ दो, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सब कुछ भगवान आप करवाते हैं, आप करवाते हैं, आप करवाते। जब इस तरह का रहेगा तब अहंकार जाता है व्यक्ति का। तो ये शक्तिमान होना और स्वतंत्र होना दोनों आसुरी प्रवृत्ति हैं। आगे कहते हैं, प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कोई भी शक्ति बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता, वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता, वो चाहे जो करे उसे कोई रोक नहीं सकता। कई लोगों को बोलो ना आज बुरे कर्म करोगे कल नरक में पछताना पड़ेगा, अरे किसने देखा नरक वर्क, कुछ नहीं होता, सब फेक है। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाऊंगा, बाइक चलाऊंगा, बेल्ट लगा करके कार चलाऊंगा, लेकिन आप नहीं मानो, कई लोग होते हैं बड़े जिद्दी किस्म के, कहते हैं और देख लेंगे कौन है, पुलिस वाले देख लेंगे, बेल्ट उतार के चलाते हैं। ओए अपना टशन तो स्टाइल है भाई, स्टाइल में रहने का है ना। फिर बाद में पुलिस वाले रोक लेते चार स्पेशल, और रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ भाई दिखा कहाँ है तेरे पेपर, तब पता चलता है सारा। और ये नहीं होता तो एक्सीडेंट हो जाता है कुछ ना कुछ। जिस दिन घाटा होता है तब पता चलती है कि जितना टशन था सब खत्म हो गया। कई लोग मिलते हैं, प्रभु जी पहले तो हम ना ऐसे गाड़ी को हवाई जहाज बना देते थे, एक बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा हुआ रीढ़ की हड्डी टूट गई, घुटने की हड्डी टूट गई, तब से प्रभु जी अब तो बस सादा जीवन उच्च विचार, धक्का खा के सीखे, दूसरे ने बोला तब नहीं सीखे। तो दो तरह की हियरिंग होती है, एक एक्सपीरियंस दूसरे के से सीखना सुनकर के, या फिर अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना। कौन सा ज्यादा बेहतर है, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना या फिर उसको एक्सपीरियंस करके सीखना दूसरों के, इसी को कहते हैं श्रवणम। यही है वासुदेवम कथा जो है ना, इसका मतलब ये श्रवण करने का मतलब है दूसरों से सीखना। मैंने एमबीए किया है, हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में सिखाते थे केस स्टडीज, दूसरे की केसेस को पढ़कर आपको इंडस्ट्री रन करनी है। हम कॉर्पोरेट में काम करते थे तब भी केस स्टडीज पढ़ते थे, कैसी प्रॉब्लम आए दूसरे की केस स्टडी पढ़ लो ताकि आप इस प्रॉब्लम में ना फंसो। सभी केस स्टडी जानते हैं, इंजीनियरिंग में भी केस स्टडीज होती है, मैनेजमेंट में भी होती है, सब जगह होती है। लेकिन केस स्टडी जो हमारा भगवत गीता है, ये भगवत गीता केस स्टडी है। अर्जुन फंसा हुआ था प्रॉब्लम में और उसको निकलने का सॉल्यूशन कृष्ण ने दिया, ये केस स्टडी है सबसे बड़ी। भागवत क्या है, बलि महाराज की केस स्टडी, प्रहलाद महाराज की केस स्टडी, ध्रुव महाराज की केस स्टडी। इस तरह की सिचुएशन अगर आए, कोई प्रहलाद जैसे भक्त बन जाए, उसका पिता ही उसका दुश्मन बन जाए, तब भी व्यक्ति भजन कर सकता है। लोग बोलते हैं जी हमारे घर की आपको नहीं पता, प्रहलाद से ज्यादा बुरा हाल किसी का नहीं है। हाथी के नीचे कभी दबाया किसी ने आपको, हाथी किसी ने पत्थर उठा के फेंका आपको पहाड़ पे से नीचे, किसी ने आपको पानियों में डुबाया है, किसी ने गोली मारी आपको, तीर मारे है, राक्षसों से मरवाया है, सांपों के जंगल में छोड़ा है। ऐसी स्थिति में भी 5 साल के प्रहलाद ने भक्ति छोड़ी नहीं, और हम करना ही नहीं चाहते। सोचिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। रशिया जैसे देश जहां पर भगवत गीता पढ़ना बड़ा मुश्किल था, 1991 में हमारे ही गुरुदेव जाया करते थे प्रचार करने रशिया में, और लोग इतनी बुद्धि लगाते थे वहां पर, केजीबी जैसे हमारी सीबीआई है ऐसे वहां केजीबी है, रशियन केजीबी, वो पकड़ लेती थी, गीता पढ़ने नहीं देती थी। हाथ में हिंदी ग्रंथ देख लिया, ये हिंदुस्तानी कृष्ण का फोटो उठाकर डाल दो साइबेरियन जेल के अंदर, पड़े रहेंगे सर्दियों के अंदर बर्फ में, ना खाने को दो ना पीने को दो, अपने आप मर जाएगा। जैसे हमारे यहां अंडमान निकोबार में डालते थे ना फ्रीडम फाइटर्स को, देश निकाल काला पानी, ऐसे उनको साइबेरियन जेल्स में डालते थे। लेकिन भक्त इतनी बुद्धि लगाते थे, खुद हाथ से लिख लिख करके भगवद गीता, खुद फोटो कॉपी मशीन को छुपा कर किसी के घर में उनकी फोटो कॉपियां बना बनाकर हाथ से सिल सिल कर दूसरों तक लेकर जाते थे। और आज रशिया में 2019 में 1 लाख से ऊपर लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं, रोज 16 माला जप करते हैं, 1 लाख से ऊपर लोग। लेकिन उन भक्तों ने प्रयास किया, वो समझ गए। क्यों क्यों समझ गए? रशियन लोग और इंडियन लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका ग्लास खाली था। खाली ग्लास में पानी भरना बहुत सरल है, ऊपर से पानी डालो भर जाए। लेकिन जिस ग्लास में पहले से ही काला पानी हो, पानी नहीं काला पानी हो, उसके ऊपर अगर आप आरओ वाटर डालना चाहोगे तो क्या होगा? या तो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, वो भी काला हो जाएगा, या फिर जो ऊपर डालोगे वो बाहर बिखर जाएगा। तो हमारे साथ हिंदुस्तानियों के साथ ये प्रॉब्लम है। हमें कृष्ण भक्ति करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमारे संसार चारों तरफ से हमें जो काला पानी भर दिया है ना, यहाँ ये निकलता नहीं सरलता से। अगर कोई बोलेगा ना पता है कृष्ण ही भगवान है, तो हम दुर्गा जी की करते थे तो वो फ्रॉड था क्या? हम शिव जी की करते थे वो गलत था क्या? हम नवरात्रि नहीं रखे है? हम शिवरात्रि ना रखे, ये आए बड़े इस्कॉन वाले ऐसे करके बोल देते हैं। क्यों? ये काला पानी भरा हुआ है, निकलता ही नहीं है। वहां खाली था ग्लास, वहां पे वो कुछ जानते ही नहीं थे रिलीजन के बारे में, बस एक पता था जीसस, और वो उसमें भी उनका इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वहां लव नहीं था। भगवद गीता सिखाती है भगवान से प्रेम करना। तो ये भगवत गीता का जो जीवन है ये प्रेम का जीवन है, इसलिए भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंत ते। मुझ तक आने के लिए मैं बुद्धि दूंगा, लोग बोलते कैसे जाऊंगा भगवान तक, भगवान कहते कुछ नहीं करना, तेषां सतत युक्ता नाम, युक्त हो जाओ, अपने को इंगेज कर लो दो चीजों में, रोज गीता पढ़ूंगा, रोज भगवान का नाम जप करूंगा, ये दो काम करने से सतत एवरीडे, डोंट मिस इट, जैसे ब्रश करते हैं ना रोज, ऐसे रोज गीता पढ़ें, रोज भगवान का नाम जप करें, तो कृष्ण कहते हैं तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, अगर तुम ये समझोगे कि मैं भगवान हूं, प्रेम से मुझे भजोगे, ददामि बुद्धि युगम, तब मैं बुद्धि दूंगा, ये नमाम उपयंति, मुझ तक कैसे आना है, वरना वही क्रियाक्रम चलता रहेगा, माला खरीदी 10 रुपए की, यहां रख दी, बोले बस आज मैंने जितने पाप किए भगवान उसके लिए मुझे क्षमा करना, आज जितने पाप किए उसके लिए क्षमा करना, तो ऐसे क्षमा नहीं करना, क्षमा होता नहीं है ऐसे, ये है कोई जीसस क्राइस्ट का चर्च नहीं है, चर्चेज में लोग जाते हैं संडे की संडे और कन्फेशन बॉक्स में जाके कन्फेस करते हैं, जीसस क्राइस्ट हे फादर मैंने इस हफ्ते जो भी पाप किया हूं आप मुझे उसके लिए क्षमा करिए, फादर कहते ठीक है तो मैं क्षमा किया आगे से मत करना, नहीं करता क्या दोबारा करता, फिर अगले संडे आता है, खैर हम बड़े डिटरमाइंड है क्रिश्चियंस, हम हर संडे चर्च जाते हैं, करने क्या जाते हैं, कन्फेशन बॉक्स में कन्फेस करते हैं पूरे वीक मैंने जो पाप किया उसके लिए मुझे क्षमा करिए, फादर कहते हैं डोंट वरी जीसस ऑलरेडी क्रूसीफाइड ऑन द क्रॉस, जीसस ऑलरेडी टंग रहे हैं तुम्हारे पापों को सहन करने के लिए, इसलिए तुम करो वो सहन करेंगे, ये तो फिलॉसफी है, आपके पाप के लिए कोई और टंग गया लेकिन उसके बाद भी आप का पाप करने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहे, इसीलिए संसार में जितनी भी भक्ति है, चाहे हम दुर्गा जी की पूजा करें, चाहे हम वैष्णो देवी जाएं, चाहे हम बद्रीनाथ जाएं, चाहे हम धाम यात्रा कुछ भी करें, उसके पीछे हमारा व्यापार होता है, मुझे कुछ चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध से अगर किसी व्यक्ति ने पूछा, गौतम बुद्ध जी मुझे शांति चाहिए, आई वॉन्ट पीस, गौतम बुद्ध ने कहा तुम्हारी शांति तुम्हारे पास है, कहा कैसे, कहा अपने जीवन से इस सेंटेंस के दो हिस्से उड़ा दो, पहला उड़ा दो आई और दूसरा उड़ा दो वॉन्ट, एक शब्द है आई वॉन्ट पीस, इसमें से क्या उड़ा दो, आई अहंकार उड़ा दो, वॉन्ट इच्छा उड़ा दो, फिर क्या बचा, पीस दूर कहां है, शांति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी शांति को डिस्टर्ब किया है इन दो चीजों ने, आई एंड वॉन्ट, अहंकार बल दर्प, इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति राक्षस अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। लोग बोलते हैं कबीर जो थे वो निराकारवादी थे, निर्गुणवादी थे, उन्होंने मूर्ति को पूजा करने को मना किया, कहते थे पत्थर पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जासे तो चाकी भली जाए पीस खाए संसार, वाह जी वाह। कबीर ने बोला किस लिए था, समझा किस लिए, और उसका प्रचार तो बहुत ही विलक्षण हो गया। खुद राजस्थान में मंडावर नाम के स्थान पे आज भी कबीर जी के स्थापित राम सीता का विग्रह है, वो राम सीता के विग्रह की पूजा करते थे, भगवान राम और कृष्ण का भजन करते थे, लेकिन लोग उनके मर्म को ना जाना, जैसे गीता को लोग समझ नहीं पाते ऐसे ही लोग कबीर वाणी को भी समझे नहीं, और अपनी मर्जी से उन्होंने कुछ भी प्रचार किया। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ से वो कहना चाहते थे ये जो भगवान है ये मूर्ति नहीं है, साक्षात व्रजेंद्र नंदन भगवान है। जिस दिन ये भाव उत्पन्न हो जाएगा ये भगवान है, उस दिन तो बस जीवन चेंज, फिर उसको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना लाइफ में, उसको भगवान मिल गए। ये भगवान का सबसे सरल रूप है, भगवान के 5 प्रकार के रूप में भगवान सेवा करवाते हैं अपने, परम व्यू, और एक भगवान का होता है अंतर्यामी, अपरारूप परारूप व्यू रूप और साथ में अंतर्यामी रूप, और 5वां रूप है आर्चा विग्रह रूप। आर्चा विग्रह का रूप भगवान ने बड़ी सरलता से ऐसा कर दिया सबके घर में अवेलेबल है, कोई भी पूजा कर सकता है मेरे, लेकिन उसे भगवान मानना पड़ेगा। जब तक मूर्ति मानोगे तब तक बात नहीं बनेगी। गोपाल जी सबके घर में रखे हुए हैं, लड्डू गोपाल हाँ है, होंगे आपके घर में भी होंगे, सबके घर में डेली खाना खिलाते हो उनको, कितनी बार, आप तो भक्त हैं इसलिए खिलाते हैं, जो भक्त नहीं है उनके घर पे कभी कभी जाओ, कहते हैं हाँ हाँ खिलाते हैं, कितनी बार, बोले एक बार, क्या खिलाते हो? बोले उनके लिए किशमिश रखी हुई है, चिरौंजी दाना रखा हुआ है। ये भगवान है। उनका वाल्टर कब साफ करते? बोले जन्माष्टमी के दिन, साल में एक बार अखबार बदलते हैं और अगरबत्ती का धुआं जो होता है वो हटाते हैं उस दिन। और अपने बच्चे का डायपर कितनी बार बदलते दिन में? बोले 3 बार 4 बार 5 बार। बच्चों को खाना कितनी बार? वो 3 बार 4 बार 5 बार, जितना चाहे उतना खिला। सोचिए हम में जो बच्चों के प्रति प्रेम है, वो प्रेम जब कृष्ण के प्रति आ जाएगा तो भगवद गीता जहन में उतर जाएगी पूरी, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। लेकिन जब तक कृष्ण को भगवान मानेंगे, अपने से दूर बस मेरी डिमांड पूरी करने वाला सप्लायर है, इन देख लिया लोग दंडवत करते हैं उसी स्टाइल में लेटने लग गए, फिर खड़े हुए, प्रभु बड़ा परेशान हूं निकाल दो इस मुसीबत से, कृष्ण कहेंगे ओके निकाल दिया, फिर थोड़े दिन के लिए गायब हो गया, फिर फंस गया, फिर आ गया, बोला प्रभु निकाल दो, फिर निकाल दिया, फिर फंस गया, फिर आ गया, ये चलता रहता। जिस दिन भगवान को भगवान मान लिया उसके बाद कोई परेशानी रहती नहीं लाइफ में। तो अपने आवरण को भक्तिमय बनाना है। यहां पर यही कह रहे हैं, यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने में रोकता है तो उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजना बनाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो उसके इस किसी भी कार्य में असुर के आए तो उसको वो क्या करेगा, काटना चाहेगा, इसको हटाओ जैसे भी करके, मेरे रास्ते में ना आए, रास्ते का रोड़ा ना बन जाए। तो अगर कोई भगवान का सच्चा भक्त होगा ना, वो सबके अंदर भगवान का दर्शन करेगा। इसलिए लिख रहे हैं वो दूसरों से ईर्ष्या करना बंद कर देगा। जो कभी किसी से ईर्ष्या करता है समझ लीजिए वो भगवान का सच्चा भक्त नहीं है, क्योंकि सबके हृदय में भी तो भगवान विराजमान है। इसलिए कृष्ण भक्त जो सच्चा बन जाएगा वो शास्त्रों के प्रति समर्पित होगा, कथाओं के प्रति समर्पित होगा, ध्यान से सुनेगा, भगवान ने जो कहा वो मानेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का जप करेगा, भगवान की गीता पढ़ेगा, ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है गीता पढ़ने से लेकर या हरि नाम जपने के लेकर के, तो आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट हम इधर ही है। कोई क्वेश्चन किसी का, कोई मन में दुविधा? नहीं, सब मुक्त हो गए, कोई परेशानी? हाँ, वेरी नाइस। आपका नाम क्या है? संबोधिनी। संबोधी, वाओ नाइस नेम। गौतम बुद्ध को मिला था बोधि, आपको मिला संबोधी, ठीक है। घर का नाम बोधि है, देखा हमने पकड़ लिया, भक्तों को सब पता चल जाता है। तो संबोधी आपने अच्छा प्रश्न पूछा, आप में अहंकार नहीं है, आपको पता है आप में अहंकार नहीं है, क्योंकि जिसमें अहंकार होता है वो कभी बोलता नहीं कि मुझ में अहंकार है, इसलिए आप में अहंकार नहीं है, डोंट वरी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी,
बलि महाराज राक्षस
कुल में पैदा हुए,
फिर भी उनको महाजन एक माना,
12 महाजनों में से एक माना जाता है। 12 महाजनों में से एक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने शरणागति करी, शरणागति के आचार्य बन गए। भगवान को पाने की 9 विधि है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम दास्यम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन जो ये विधि है उसके आचार्य बन गए, आत्मनिवेदनम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो गया। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तू किस कुल में पैदा हुआ है। अगर कोई शूद्र कुल में पैदा हुआ है उसके घर वाले डिमांड ही कर रहे हैं, हम तो ना चक्का जाम कर देंगे राजस्थान में, और जी हमको तो आप अलग से एक परसेंटेज दे दो, हमारा रिजर्वेशन दे दो। रिजर्वेशन मांगने वाले परिवार का एक व्यक्ति गीता पढ़ने लग जाए और वो इन सबसे मुक्त हो जाए तो वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति नाम पे तो शर्मा लिखता है, लेकिन जब वो बाजार में चलता है भगवान का नाम लेने में उसको शर्म आती है तो क्या वो ब्राह्मण है? तो भगवान ने कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग, जो तेरे गुण है और जो तेरे कर्म है उस पर मैंने विभाग किया है। तो भगवान ने बलि महाराज को ये नहीं देखा असुर है। पूतना जब भगवान को दूध पिलाने आई, कल हलाहल यहां पर जहर लगा के कालकूट लगा के आई, तो भगवान ने उसका दूध पान किया। भगवान बोले कि मैं सिर्फ पॉजिटिव देखता हूं, सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव देखता ही नहीं हूं, भगवान का दर्शन ही नहीं करते नेगेटिव का, भगवान सिर्फ पॉजिटिव देखते हैं। उन्होंने कालकूट जहर नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कंस के द्वारा भेजी गई, उन्होंने ये नहीं देखा मुझे मारने आई, उन्होंने ये देखा मुझे दूध पिलाया। इतने कृपालु भगवान। अहो बकियम स्तन कालकूटम, स्तन पर कालकूट नामक जहर लगा के भगवान ने कहा मैं तेरा ये गुण लेता हूं कि तूने मातृभाव से मेरी सेवा करी तो मुझे धात्री का दर्जा प्रदान करूंगा। उसको वही दर्जा प्रदान किया जो एक माँ को प्रदान कर सकता है एक बच्चा, धाम प्रदान किया। किसी और असुर को धाम नहीं दिया भगवान ने, सिर्फ पूतना को दिया क्योंकि उसने सरेंडर शिप। और ये पूतना कौन है पता है? बलि महाराज की पुत्री है, पूर्व जन्म की रत्नमाला। बैठी थी अपने घर में, वामन भगवान को देखा, बाल सुखा रही थी, कहा अरे कितना सुंदर बालक है, मन करता है दूध पिलाऊं। और जैसे ही भगवान ने तीन पग मांग के अपना रूप बड़ा कर लिया और छल लिया बलि का, कहती मन करता है इसने मेरे पिता को लूटा है, जहर देके इसको मार दूं। कृष्ण ने दोनों गुणों को स्वीकार किया, अंगीकार के कृष्ण कहते ठीक है स्तनपान भी करूंगा साथ में जहर भी तुझे लगाने का मौका दूंगा। ये कृष्ण ही कर सकते और किसी में शक्ति नहीं। इसलिए कृष्ण ये नहीं देखते किस कुल में पैदा हुआ है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को भजे। बलि ने अपनी शरणागति कर दी, भगवान ने वो अंगीकार किया, बाकी सब नेगेटिव छोड़ दिया। विभीषण कौन से कुल में पैदा हुए? राक्षस कुल में पैदा हुए। जब रावण ने एक बार पूछा विभीषण तुम्हारे चारों तरफ राम 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 लिखा हुआ है, क्या तुम मेरे भाई होकर के राम का भजन तो नहीं करने लगे हो, कल्प्रिट तो नहीं हो, झूठे तो नहीं हो? अभी विभीषण क्या करते, फंस गए थे, उन्होंने अपनी स्थिति को संभालते हुए कहा नहीं भैया मैं तो आप ही का भजन करता हूं। कहा मेरा नाम राम नहीं, कंफ्यूजन, मेरा नाम रावण है। कहा नहीं भाभी का नाम भी तो है। बोले मतलब? बोले रा से रावण, मां से मंदोदरी, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है राम। मैं तो भैया भाभी आपका भजन करता हूं। रावण बोला फिर तो पूरी लंका में लिखवा दो। जिस पल लिखवाया उसी दिन हनुमान जी का प्रवेश हो गया है ना। तो भगवान का भक्त किसी भी कुल में पैदा हो सकता है, जरूरी नहीं है प्रहलाद हिरण्यकश्यप के, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां पैदा हो। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु। हाँ देखो आपका भाव अगर शबरी वाला है तो स्वीकार है। भगवान प्रभुपाद ने दो विधि दी, एक विधि है जिसको कहते हैं वैधी भक्ति, एक विधि है जिसे कहते हैं रागनुगा भक्ति। वैधी भक्ति कहती है नियमों का पालन करो। जैसे ही कोई व्यक्ति बैंक का ऑफिसर बनता है, पीओ बनता है, तो उसको पहले 6 महीने के लिए इंटर्नशिप पे रखा जाता है, टेम्परेरी। जब वो सीख जाता है नियमों में, सुबह आना 8 बजे, शाम को 5 बजे जाना, 1 से 2 लंच टाइम रखना, क्लोज कर देना, वो सारे नियम सीख जाता है, तब उसे परमानेंट। ऐसे ही शास्त्र कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, पहले क्या बनो? वैधी भक्ति करो, नियम पालन करो। जब वैधी भक्ति करते करते कृष्ण से अनुराग उत्पन्न हो जाए तब राग भक्ति करो, फिर झूठे मुंह से भी अपना झूठा भी कृष्ण को भोग लगाओगे, स्वीकार होगा। लेकिन जब तक कृष्ण में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तब तक स्नान करो, बिना खाए पिए झूठे मुंह भगवान की पूजा मत करो, स्नान करके पहले पूजा करो फिर प्रसाद ग्रहण करो। छुट्टी वाले दिन तो जल्दी और जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपकी, हाँ तो उनको पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए हमको सबकी हेल्प करनी चाहिए। डोंट वरी, ठीक है, आप सबकी हेल्प किया करो। जो कोई गलत काम करता है उसे करने दो, हम अच्छे काम को शुरू करेंगे। ताकि हमारे से जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो लौट करके फिर हमारे पास भी अच्छा होता है। ठीक है, यू डू गुड, आप अच्छा काम करो। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, देखिए दो प्रकार की सेवा है ठाकुर जी की, कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में हरिनाम संकीर्तन दिया, लेकिन जब जो है ना ये हमारी निजी सेवा है जो कि श्रील प्रभुपाद हमारे गुरुदेव के द्वारा दी गई, तो ये हमारी साधना का हिस्सा है निजी सेवा। जैसे मैं बैंक जाता हूं या कहीं नौकरी करने जाता हूं, वहां पर मैं तनख्वाह लेता हूं, वो काम करने की है, लेकिन मैं लंच खा रहा हूं उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, लंच मेरा क्या है, मेरी निजी सेवा है। तो मैं कीर्तन करता हूं ताकि मेरा जप अच्छा हो सके। जप सेवा है और कीर्तन प्रचार है, तो वो भी सेवा है, प्रचार सेवा है। ये निजी सेवा है, वो प्रचार सेवा है, दो प्रकार की सेवा। तो इसलिए कीर्तन शक्तिशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। जितना अधिक कीर्तन करेंगे उतना अधिक अच्छा जप होगा, लेकिन जप नहीं करके खाली कीर्तन करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया तुम जप करो, तो गुरु की अवज्ञा करके हम नहीं कर सकते। इसलिए एक है निजी सेवा, एक है प्रचार सेवा। तो प्रचार सेवा में जाने से पहले निजी सेवा होनी चाहिए। जैसे एक बार एक बूढ़ी औरत थी, उसने खाया नहीं 7 दिन से, और इतना बड़ा गठरी उठाकर अपने सिर पे चल रही थी। तो उसने दूसरे लोगों को बोला, भाई मेरे तो कमर टूट जाए, कोई मदद कर दो, कोई मदद कर दो। नहीं की तो बूढ़ी गिर गई। गिरी माँ तो सब आए उठाने के लिए, माँ 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 माँ। तो यहां क्या दिक्कत थी, उसकी गठरी उठाने की शक्ति क्यों चली गई, क्योंकि उसने 7 दिन से कुछ खाया। तो गठरी है कीर्तन और जप है खाना। जब मैं अपना खाना खा लेता हूं, मेरी आत्मा की पुष्टि होती है, तो मैं भारी से भारी कीर्तन की गठरी, सेवा की गठरी उठा सकता हूं। अच्छा सेवा करने के लिए अच्छा जप होना चाहिए, और अच्छा जप होने के लिए कीर्तन में बैठने से हमें जप के प्रति शुद्धि आती है, क्योंकि कीर्तन कलयुग का हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। तो जहां कीर्तन हो वहां भी बैठना चाहिए, कीर्तन करना भी चाहिए, लेकिन जप को सेक्रीफाइस करके कुछ नहीं करना है। जप निजी सेवा गुरु के द्वारा दी गई है, इसको मिस नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते आज मैंने जप नहीं किया, आज मैंने कीर्तन कर लिया। जप तो निजी सेवा है, वो आत्मा की भूख है, उसको भर लो फिर सेवा करो, कीर्तन सेवा। ठीक है, हरे कृष्णा। यस मैया, हाँ पूछिए। हाँ, तो भक्त जो होते हैं ना, वो चाहे छोटे हो या बड़े हो, सबको उल्लू बना सकते हैं, उनके पास बड़ी शक्ति होती है। ठीक है, हरे कृष्णा।